अब हम पढ़ेंगे नमाज पढ़ने वाले यानी इमाम की इक्तदा के अहकाम। बहुत अहम अहकाम आता है, देखिएगा अभी। यानी आप जब किसी भी मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अब आप कौन है? मुक्तदी। कौन होता है मुक्तदी? इक्तदा करने वाला। इक्तदा करना क्या होता है? इमाम के पीछे पीछे चलना। अब हमारे कल्चर में चूंकि खवातीन मस्जिदों में नहीं जाती, लेकिन माशाल्लाह हरम में जाएं तो भी या मस्जिद नबी में जाएं तो इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है, तो हमें मसाइल पता होने चाहिए। तो पहली बात इसमें क्या है, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इमाम से पहल ना करो, जब वो तकबीर कहे इसके बाद तुम तकबीर कहो, और जब इमाम वलद्दालीन कहे तो तुम इसके बाद आमीन कहो, और जब इमाम रुकू करे तो तुम इसके बाद रुकू करो, और जब इमाम समे अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु कहो। रिवायत है सही मुस्लिम 415। पता क्या चला? जल्दी ना कीजिए। आज सारे हुक्मों में देखिए जल्दी की बात आती जा रही है, यानी पहले इमाम वो काम कर ले फिर आप कीजिए। वो कहे अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू ही ना, फिर उसके बाद आप कहें। अच्छा, इसमें नमाज पढ़ाने का भी एक अदब है। मिसाल देखिए, गलती लोग करते हैं रुकू से सजदे में। रुकू से उठे, इमाम साहब अभी खड़े थे, अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर सजदे में जाते हैं। अच्छे इमाम क्या है, आधे से ज्यादा यानी एक्शन कर चुके हो ना, फिर अल्लाह अकबर के, क्योंकि कुछ मुक्तदी उनसे ज्यादा तेज रफ्तार होते हैं। तो इमाम पहले करेंगे, आप फिर बाद में करेंगे, ठीक है? और जब वो रुकू में जाएं तो फिर जो वो करें उसके साथ साथ आप भी समय अल्लाहु लिमन हमिदा के जवाब में अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम कहेंगे। बरा भी नाज़िब रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते थे, जब आप समय अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो हम आपके पीछे कौमे में खड़े हो जाते, और फिर हम में से कोई अपनी पीठ सजदे में जाने के लिए ना झुकाता, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी ज़मीन पर रख देते, फिर हम आपके बाद सजदे में जाते। ये नोट करने की बातें, जल्दी नहीं करते थे, अल्लाह के नबी जब एक एक्शन पूरा कर लेते तो फिर ये करते थे वही काम। और ये रिवायत है सही बुखारी 690। यहाँ भी देखिए आपको हिल्म और तहम्मुल ही दिख रहा है। अब आप देखिए कि नबी सल्लम कौमे से सजदे में पहुँच कर अपनी पेशानी मुबारक ज़मीन पर ना रख देते थे, उस वक़्त तक तमाम सहाबा खड़े रहते थे, कोई पीठ तक ना झुकाता, और हमारा हाल क्या कि इमाम कौमे से सजदे में जाने के लिए भी अल्लाह अकबर ही कहता है, तो मुक्तदी इमाम के सजदे में पहुंचने से पहले ही सजदे में पहुंच चुके होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ना समझी है ला इल्मी है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, इमाम से पहले रुकू करो ना सजदा, और इमाम से पहले खड़े हो ना पहले सलाम फेरो। मुराजे के चारों काम, रुकू, सजदा, खड़ा होना और सलाम फेरना, ये सब काम इमाम के बाद करने चाहिए। और इमाम को भी लोगों को इतना टाइम ज़रूर देना चाहिए कि वो सब ये काम कर लें। ये रिवायत सही मुस्लिम की 426 नंबर की रिवायत थी। ये हदीस जो अगली बयान करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा लोग इसको मिस कोट भी करते हैं और बहुत से सवाल भी करते हैं, आप इसको हदीस समझकर सुनिए क्योंकि सही रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इमाम से पहले सर उठाने वाला डरता नहीं कि अल्लाह ताला इसका सर गधे के सर की तरह कर दे या इसकी शक्ल गधे जैसी बना दे? अंदाज देखिए फिर बात कीजिए। रिवायत है बुखारी की 691 और मुस्लिम 427। क्या मुराद है इससे कि जल्दी ना करो, बस ये मुराद है। और अक्ल नहीं होती ना गधे के सर में, तो मुराद है कि ऐसा शख्स बेअक्ल है जो इमाम से पहले ये काम करे। सिर्फ ऐसी हदीसें लोगों को नहीं बतानी चाहिए, सॉरी, इसलिए कि लोग फिर ऐसी हदीसों का मजाक उड़ाते और शक करते, और बहुत कुछ है तारीख में इस एक हदीस के बारे में। आपका मेरा बस इस पे अमल ये है कि इमाम से पहले कोई एक्शन नहीं करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज में कोई बात दरपेश हो तो मर्दों के लिए सुभान अल्लाह कहना और औरतों के लिए हाथ पर हाथ मारना, यानी एक थोड़ी सी आवाज़ पैदा कर देना। ये बुखारी की रिवायत है 1203, 1204 और मुस्लिम 422। भाई सवाल, अल्लाह की मर्ज़ी, नबी ने जो कह दिया वही ठीक है, और कोई बात दरपेश होने से क्या मुराद है? इमाम से कोई गलती हो गई। तो क्या पता चला कि औरत सुभान अल्लाह कहने की बजाय दाएं हाथ को बाएं हाथ की पुश्त पर मारेगी। कई लोगों ने इस बात को बुनियाद बना के औरत की आवाज को पर्दा करार दिया। जरा से इस पे बात कीजिएगा। देखिए, मर्द कहता है सुभान अल्लाह तो इमाम साहब को समझ आ जाता है कि मैंने या तो कोई एक्शन छोड़ा है या किरत में कोई गलती की है। औरत सुभान अल्लाह नहीं कहती, क्यों? ताली बजाएगी। अच्छा, आप कहते हैं कि औरत की आवाज पर्दा, तो इमाम अगर उसका शौहर हुआ फिर क्या होगा? इमाम बाप है, इमाम बेटा है, तो क्या उसमें औरत की आवाज अपने बेटे और उसके लिए कोई पर्दा? ये तो बात ही नहीं है। देखिए, हमेशा चीजों को ना वहां लेके सीखा करें, समझा करें जहां वो आई हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों से मसले अखज करना इससे अवॉइड कीजिए। सीधी सीधी बात है, समझ आती है ठीक है, नहीं आती तो इधर उधर ना जाए। दीन सिखाने और सीखने में सीधे रहें बस, ना किसी को सच्चा साबित करने के लिए जोर लगाएं और ना झूठा साबित करने के लिए। ये बात है भाई, मुझे इतनी समझ आई है, आप भी देख लें, बाकी जो बात है उसको छोड़ दें। और बात से यकीन करें, हाथ बजाने को तालियां बजाने की दलील बना दिया नाउज़ुबिल्लाह, कि देखे देखे औरत तालियां बजाएंगी। और अगर आप देखें कि अगर आवाज और फितना, तो क्लैपिंग की आवाज़ तो और ज्यादा खूबसूरत है औरत से। बस अल्लाह के नबी ने कह दिया, क्या इतनी बात काफी नहीं? कुछ जरूरी है कि आप इधर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें जरूरी करें? ऐसी बात नहीं है, ठीक है? दीन यही सिखाता है, बात समझ में आ गई तो भी करनी है, बात समझ में नहीं आती तो भी करनी है। आप कहते नहीं औरत के सुभान अल्लाह, मर्द करे हाथ पे हाथ, आप और मैं इजाजत नहीं रखते इस काम को बदलने की, और इस तरह बाल की खाल नहीं निकालनी। आज दीन का हुलिया बिगड़ गया बाल की खाल निकालने वालों से। अल्लाह के नबी की रिवायात से मिलता है कि बाद में कुछ लोग ऐसे आएंगे कि तुम उनकी नमाजों के आगे अपनी नमाजों को हल्का जानोगे, उनके रोजों के आगे तुम्हें अपने रोजे हल्के लगेंगे, लेकिन वो दीन से ऐसे निकले होंगे जैसे बाल निकलता आटे से। तो हमेशा सीधी बात रखें, और जब आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं कुछ मनवाना, किसी को लट डाउन करना, किसी को जहन्नुम में फेंक के आना, किसी की नमाजों को मरदूद करार देना, तो आप इतना जोर ही नहीं लगाएंगे? भाई देख लीजिए, आपकी मर्जी है, बात सामने लिखी है, और अगर नहीं भी इस पर ज्यादा बात की, बस ऐसा हदीस समझ के निकल जाए, तो आप देखिए मोतदिल मिजाज के साथ नमाज का टॉपिक पढ़िए, सुनिए। सबसे ज्यादा झगड़े और इख्तलाफात आज हमारे कल्चर में नमाज के तरीके पे। खुशू है कि नहीं ये किसी को नहीं पता, वक्त पे पढ़नी ये नहीं पता। हाँ, जो पढ़ रहा है उसके बारे में पीछे पड़ जाएंगे किस तरीके से पढ़ता है, और जरूर किसी को चार में से एक को खराब कह के आना है। इन चीजों से बचने की जरूरत है। चलिए, इमाम साहब से गलती हुई, इसको कहते हैं लुकमा देना। लुकमा, अब रोटी नहीं खिलाई जाती इमाम साहब को, यानी अगर इमाम साहब कोई गलती कर दें तो आप क्या करेंगे? सुन लीजिए रिवायत, मिसवर बिन यजीद रजी अल्लाह अनहो से है। एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरत में कुरान पाक का कुछ हिस्सा सहवन छोड़ दिया। सहवन क्या होता है? भूल लग गई, इसी से सजदा सहव है ना। एक आदमी ने नमाज के बाद कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुलां फुलां आयत छोड़ दी, तो आपने फरमाया तुमने मुझे याद क्यों ना कराया, यानी मुझसे भूल लाहक हुई तो आप मुझे याद दिला देते। ये रिवायत है अबू दाऊद की 907, सही रिवायत है। तो गोया कि आपने इजाजत दी कि अगर ऐसा कभी आगे भी हुआ तो आप मुझे याद करा दिया करें। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात हो गई मर्दों की इमामत की। अब देखते हैं कि औरत की नमाज इमामत के सूरत पे कैसे होती है, यानी बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, अभी से बता दूं, फिकी क्वेश्चन है ये। ना अकीदे से इसका ताल्लुक है, ना इसका आखरत से ताल्लुक है, बस एक फिकी क्वेश्चन है कि औरत इमामत कराएगी कि नहीं। और इमामत के लफ्ज को समझ लीजिए, अभी ऊपर रिवायत सुनकर आए हैं कि जो इमाम करे वो तुम भी करोगे। तो पहली बात देखिए कि औरत और मर्द की इमामत में बहुत फर्क है, ठीक है? मर्द इमाम बनता है, अकेला खड़ा होता है आगे, बाकी जो भी मर्द, औरतें या बच्चे या कोई एक भी है वो पीछे खड़े होंगे। औरत ऐसे नहीं कर सकती। औरत अगर ज्यादा से ज्यादा, आपको ये कह सकते हैं कि औरत मिल के नमाज पढ़ सकती हैं। तरीका क्या होगा? पहली सफ के वसत में एक औरत दूसरी मुक्तदी औरतों के बराबर खड़ी होगी, यानी औरत मर्द की तरह आगे अकेली इमाम नहीं बनेगी, चाहे पीछे औरतें क्यों ना हो, मर्द तो दूर की बात है, ठीक है? और फिर किसी ने कहा कि फलां जगह पे ईद की नमाज सिर्फ औरत पढ़ाती है और पीछे औरतें हम होती हैं, मर्द नहीं होते, तो मैंने तो कभी नहीं ऐसा सुना। ठीक है, तुम औरत आगे नहीं खड़ी हो सकती। उम्मे बरका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वह अपने घर वालों की इमामत कराएं। हज़रत आयशा ने औरतों की इमामत इस तरह कराई कि वह सफ़ के दरमियान खड़ी हुई थी, यानी मिल के नमाज़ पढ़ी, ये कह लीजिए, यानी औरत को भी अजर मिलना चाहिए कि नहीं 25 नमाजों का। तो बीच में खड़ी होगी, आगे नहीं खड़ी होगी, ठीक है। और ये अबू दाऊद की रिवायत है 592 और इब्ने खुजैमा की रिवायत 1676 और सही दर्जे की ये रिवायत है। फिर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने औरतों की इमामत इस तरह कराई कि वो सफ़ के दरमियान खड़ी हुई थी। आप देख लीजिए, रिवायत आपके सामने है, दारकुतनी 404 जिल्द 1 है, 1429 हदीस का नंबर है। और भी है। अब आप बताइए कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। अब कुछ लोग नहीं मानते कि नहीं तो ना कराए, आप इसको झगड़ा क्यों बनाते हैं, आपका दिल नहीं मानता, आप ना पढ़िए, फ़र्ज तो नहीं ना। इन झगड़ों को ख़त्म करने का दौर है। आज के दौर में अगर हमने दीन देते वक्त अपनी आवाज़ों में सोज और गुदाज पैदा ना किया और सिर्फ इन्हीं इश्यूज को उछाल उछाल कर दूसरों को न जाने क्या कुछ साबित ना कर दिया, तो आप याद रखिएगा कि अल्लाह के यहाँ जवाबदेही है। आज हमने मस्जिदें तो अलग की, मदरसे तो अलग किए, इदारे तो अलग किए और न जाने क्या। दलाइल से बात कीजिए, अकीदे में कोई हीलो हुज्जत बर्दाश्त नहीं है, अकायद को नहीं बदलना, कोई बिदत नहीं लानी, बाकी अगर इबादात में 19-20 के फ़र्क से कोई काम कर रहा है तो उसके भी दलाइल, उसके भी दलाइल, आप मैं क्यों फोर्स करते हैं। लाइक राह फिद्दीन अगर गैर मुस्लिम के लिए है तो मुस्लिम के लिए नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको नॉलेज दे दें, बस नॉलेज दे दीजिए कि ये है और वो है, बस आप बहस ना करें। देखिए एक जुमला लिख लिए, वी नीड टू कन्वे द मैसेज, वी डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्विंस देम। जब हम कन्वे करने की बजाय कन्विंस करने लगते हैं तो झगड़े होते हैं। आज दुश्मन सरों पे खड़ा है, हमारी नस्लें उनके टारगेट पे हैं और हम इन मसलों पे झगड़ रहे हैं। जो मसले अपनी जगह अहम होंगे लेकिन दीन की असल नहीं है, सॉरी। और आज जितना फिकी इख्तलाफ है, और चार आयमाए कराम का नाम लेके, और पांचवी को तो पीछे कर भी दीजिए, चार आयमाए कराम का नाम लेकर जो आज लोग अपनी मस्जिदें इदारे अलग कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी जवाबदेही के मुंतजिर रहे। तोड़ दिया उम्मत को, फिरकों में बांट दिया, मस्जिदों के बाहर बोर्ड लगा दिए, एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ने पे कुर्सियां तुड़वा दी, ये दीन नहीं है। जवाबदेही होगी कल, आप अकेले नहीं जा सकते जन्नत में, आपको दूसरों को साथ लेके चलना। इल्म दीजिए, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं। ला इकराहा फिर दीन की बात सच, प्योर फ्रेश मिल्क विदाउट वाटर, सोना खालिस, उसके बाद छोड़ दीजिए बस। क्यों जिम्मेदारी लेते हैं आप इतनी, पहले प्यार कीजिए मुसलमानों से, उनको मानिए अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ये मेरा मुसलमान भाई है, ये मेरी बहन है। फिर दलाइल सामने रखिए, ऐसे लोगों से इल्म लीजिए आज के दौर में जो जज्बाती नहीं है, इमोशनल नहीं है, किसी एक स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट नहीं करते। काल अल्लाह व काल रसूल कहते सब यही, हम कुरान और हदीस पे बात करते हैं और सही हदीस नहीं मानते आप, सिर्फ किसी एक के कॉल के आगे, ये ज्यादती है। इस पर ठंडे दिल से बात करने सोचने की ज़रूरत है। और यकीन करें कि कोई इमाम ये नहीं कहता नमाज ना पढ़ो, कोई ये नहीं कहता फजर के चार फर्ज और छह सुन्नतें, पांच नमाजें रखते भी वही, चले बहुत से ज्यादा किसी ने सुन्नत को भी फर्ज कर लिया, किसी ने नफलों को भी नमाज का हिस्सा बना लिया, कोई बात नहीं, फर्जों का तो इनकार कोई नहीं करता। लेकिन वो लोग जो एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द थे, वो लोग जो एक दूसरों की दुआओं में थे, वो लोग जो एक दूसरे के सदका जारिया थे, आज हम उन्हीं के नाम लेकर वही जो तीसरे पारे की पहली आयते हैं, तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद करके आयमे कराम के मामले में उस तरह झगड़े शुरू कर दिए जैसे कि नौजुबिल्ला पहले दौर में लोगों ने अम्बिया कराम के नाम पे लिए। दीन वुसअत नजर चाहता है, वुसअत कल्बी चाहता है। इल्म लीजिए, खुद पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ते हम, हमारे पास इतना वक्त है, हम अखबार पढ़ लें, खबरें सुन लें, ये से वो से ये से, तो हम दीन क्यों नहीं सीखते, क्वेश्चन है, खुद से पूछिए क्यों नहीं सीखते दीन। क्या मसरूफियात है हमारी, क्या कमाइयाँ करके जाएंगे दुनिया से, लाखों छोड़ के जा रहे थे, चंद कम हजार छोड़ जाइए, बच्चों ने तो वैसे भी जो करना है वो अपने हिसाब से ही करना है। तो देखिए इन बातों को मैं क्यों इस तरह आपसे बार बार बात करती हूँ कि मिजाज दीन का बना लीजिए, बाखलाक बादब बानसीब, सबको अगर अखलाक की ज़रूरत है तो दीन वालों को सबसे ज़्यादा अखलाक की ज़रूरत है। और आज अगर हम दीन सीखने सिखाने के नाम पे झगड़े लेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इमामत के चंद मसाइल लेते हैं। अब अगला सब टॉपिक क्या है कि इमामत से मुतल्लिक कुछ रैंडम बातें। पहली रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से है, और आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बुक आपके लिए चूज़ की, हर बात एक हदीस है। हदीस बात, टॉपिक हदीस, किसी का कोई बीच में अब नाम नहीं पढ़ रहे, किसी का फतवा नहीं पढ़ रहे, सब मोतबर है, उस्ताद भी मोतबर, इमाम भी मोतबर, मुहद्दिसीन भी सब, लेकिन अल्लाह की बात, रसूल की बात, टॉपिक हदीस, टॉपिक हदीस। वरना तो ये एक बुक 10 गुना बड़ी हो जाती अगर बीच में दलाइल और बातें डाल दी जाए। तो सबसे सिक्योर चीज़ वही होती है जो आपको रियल रिसोर्स से मिले। तो इमामत के मसाइल में पहली बात हज़रत आयशा की रिवायत है, सल्ला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम फी हुजरती ही वन नासु यातमूना बिही मिन वराइल हुजरती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने अपने इतिकाफ़ वाले हुजरे में नमाज़ पढ़ी और लोगों ने हुजरे से बाहर आपकी इक्तदा में नमाज अदा की। बहुत ही प्यारी रिवायत है, रिवायत है ये अबू दाऊद की 1126, और बुखारी में भी है इसकी कॉपी 729 नंबर। क्या पता चला? इमाम और मुक्तदियों के दरमियान कोई दीवार हायल हो सकती है, नमाज हो जाएगी। इवन इमाम किसी और कमरे में और मुक्तदी पीछे हैं, ये इमाम अपने छोटे से हुजरे में है और मुक्तदी पीछे, हो जाएगी नमाज, ये मुराद है। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि मैं रात की नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाईं तरफ खड़ा हुआ, आपने मेरा हाथ अपनी पीठ के पीछे से पकड़ा और मुझे अपने दाईं तरफ कर दिया। जी, रिवायत है सही बुखारी 726 और मुस्लिम 763। लेकिन इसमें बहुत प्यारे से अमल है कि दूसरी तरफ कोई खड़ा हो, यानी उनको राइट साइड पे खड़ा होना था, वो लेफ्ट पे खड़े हो गए। कभी कई दफ़ा ऐसा करते हैं बच्चे, तो इमाम पीछे से प्यार से, जैसे बड़े बगल में नहीं लेता बंदा, तो उनको अपने आगे से नहीं गुजारा, ये नोट कीजिए, इमाम के आगे से नहीं गुजरेगा, उस बंदे को अपने से पीछे से करके लेफ्ट से राइट पे कर दिया। बहुत सारे बच्चों के साथ ये इश्यूज होते हैं, तो बड़े प्यार के साथ उनको करा, फतवा ना दे दें कि जी आप लेफ्ट साइड पे खड़े हो गए तो जहन्नमी और दोजखी, ये लफ्ज़ निकाल दीजिए डिक्शनरियों में से। और इससे ये भी पता चल जाता है कि गलती अगर कोई करता है तो नमाज के दौरान भी उसकी इसलाह की जा सकती है, ये भी इससे एक मसला अखज़ होता है। और इससे ये भी पता चलता है कि नवाफिल की जमात में तकबीर यानी इकामत नहीं है, और अगर अकेले आदमी ने नमाज शुरू की फिर दूसरा भी इसके साथ आ मिला तो पहला नमाजी इमामत की नियत करके नमाज जारी रखेगा, यानी इमाम अपनी नमाज नहीं तोड़ेगा लेकिन दूसरे की इसलाह कर देगा। और एक अकेला पढ़ रहा था, कोई बाद में आ गया तो वो उसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यही लग रहा है बिल्कुल। और जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज में खड़ा हो गया तो आपने मेरा कान पकड़कर मुझे अपने दाईं जानिब कर लिया। और याद रखिए एक सफ़र का वाक़या था, और कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने एक ही चादर में नमाज पढ़ी, यानी कपड़ों की कमी का ये हाल था कि सफ़र में कोई दूसरा कपड़ा भी नहीं जो आप पहन लें। और ये मुस्लिम की रिवायत है 766। तो ये रैंडम चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा रही हैं, और इसमें इन लोगों की तरदीद है जो बड़ी गैर जिम्मेदारी से कह देते हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी। यहाँ तो देखिए बदन पे कपड़े भी बस पूरे पूरे हैं। इसी तरह अगर मुक्तदी एक हो तो वो इमाम के दाईं तरफ और इसके बराबर खड़ा होगा, इससे ये भी पता चलता है। हाँ, जब दूसरा आ जाए तो वो अगले को भी पीछे हाथ से बुला सकता है, तो फिर दो पीछे होंगे। और ये रिवायत बुखारी की है 697। हज़रत बिलाल कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर तकबीर कहते हैं, यानी हज़रत बिलाल का मामूल क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर तकबीर कहते और आपके मसल्ले पर खड़े होने से पहले तकबीर कही जाती और लोग सफ बंदी कर लेते थे। जी, ये रिवायत है सही मुस्लिम में 606 605। तो वही बात है इसमें भी कि तकबीर के बाद तकबीर और सफ़े बंदी। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं जमात में आपके दाईं तरफ खड़ा हुआ और एक औरत हमारे पीछे खड़ी हुई। क्या पता चला कि अगर मुक्तदियों में एक मर्द हो तो मर्द इमाम के दाईं तरफ और औरत एक हो या ज़्यादा पीछे अलग सफ में खड़ी होगी, और ये रिवायत है सही मुस्लिम 660 नंबर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के अय्याम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इमामत कराई। एक दिन आपने तकलीफ़ में कमी पाई, यानी तख़फीफ़ हो गई, यानी तबीयत कदरे बेहतर थी, तो आप दो सहाबा रदी अल्लाह अन्हुमा के कंधों पर हाथ टेकते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। जब अबू बकर सिद्दीक़ ने आपकी आमद महसूस की तो पीछे हटना चाहा। आपने इशारा किया कि पीछे ना हटो। आप अबू बकर सिद्दीक़ की बाईं तरफ बैठ गए और बैठ कर नमाज अदा की, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो खड़े हो गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा करते और लोग अबू बकर सिद्दीक़ की इक्तदा करते, और ये जोहर की नमाज थी। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मसला समझ आ गया इसमें। और ये रिवायत है बुखारी 713 और मुस्लिम 418। यानी इवन बीमारी की हालत में फिर आपने साथ बैठ कर भी नमाज पढ़ी, और गोया कि ये अलामत थी इस बात की कि अबू बकर सिद्दीक ही आपके बाद खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे। यानी दुनिया में इशारे मिलने लगते हैं ज़िंदगी में अगले वक्त के। फिर इसी तरह मास रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते, फिर अपनी कौम के पास आते और इन्हें नमाज़ पढ़ाते। जी, इसका पहले तो रेफरेंस लीजिए, बहुत ही प्यारी रिवायत है, बुखारी की रिवायत है 700 और 701 और मुस्लिम में 465। अब इसमें से मसले देखिए कितने प्यारे निकलते हैं। मर्द मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, बेगम घर में है, वो कहती हैं आप तो मस्जिद में पढ़ लेंगे, तो मैं कैसे पढ़ूँ, वो कहते हैं आओ। अब वो बीवी के साथ या घर वालों के साथ नमाज के बिल्कुल इब्तदाई वक्त में जमात करवा दे, ठीक है, मर्द की वो नफिल होगी, जैसे सुन्नतें भी होती हैं ना, नवाफिल भी होते हैं, घर वालों के फ़र्ज़ हो जाएंगे। और ये भी याद रखिए कि इमाम और मुक्तदी की नियत फ़र्क हो सकती है, उसके भी आगे दलाइल कहीं आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो नोट कीजिएगा। आप वो पढ़ा के गए और वहाँ जाके खुद पढ़ लें। कई दफ़ा होता है ना, आप नमाज़ पढ़ चुके हैं, कोई और आता है तो आप उसके लिए पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, दोनों को सवाब होगा। और ये नमाज हज़रत मास के लिए नफिल और मुक्तदियों के लिए फ़र्ज़ बन जाती थी। इससे पता चला कि नमाज में इमाम और मुक्तदी की नीयत का मुख्तलिफ होना जायज़ है। चलिए दलील आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मालूम हुआ कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लेने के बाद दूसरों को भी वही नमाज़ पढ़ा सकते हैं। देखिए तआवनुल बिर्री व तक्वा। हज़रत अबू सईद कहते हैं कि एक आदमी मस्जिद में आया, आप नमाज़ पढ़ा चुके थे, वो आदमी अकेला नमाज़ पढ़ने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कोई शख्स ऐसा नहीं जो इस पर सदका करे और इस आने वाले के साथ बाजमात नमाज़ पढ़े। ये अबू दाऊद की रिवायत है 574 और तिरमिज़ी 220 और मुस्तदरक अल हाकिम में 209। क्या पता चला कि सदका सिर्फ माल का नहीं होता, नमाज का भी होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पता चला कि दूसरों को नेकियों पे असिस्ट कीजिए, दूसरों के साथ अच्छा मामला रखिए, और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि दीन कितना आसान है। आप देखिए कि ऑलमोस्ट देखिए हमारी हाफ बुक होने लगी है, कितने सुकून से कितने आराम से हमने ये चीज़ें समझ ली, कुछ भी तो नहीं इस तरफ है। बहुत लोग नमाज का मौजू पढ़ते सुनते ना 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 उससे नहीं पूछना, वो कौन है, किस मसल किस, सच बताइए अभी तक पढ़ के आपको क्या लगा, कोई नमाज बहुत मुश्किल चीज है, गंभीर मसला है, ना समझ में आने वाली बात है, कुछ भी तो नहीं है, ठीक ही टीसी। अभी तो हमने नमाज शुरू भी नहीं की, अब शुरू करनी है, आगे अगला टॉपिक बहुत अहम है, नमाज नबी तकबीर उला से सलाम तक। अभी जो हमने पढ़े ना साइड इश्यूज पढ़े हैं, आप में से मैं इमाम तो नहीं है, हम में से कोई बाजमात नमाज भी नहीं हर वक्त पढ़ता, लेकिन वो नमाज जो मैंने और आपने हर रोज हर वक्त पढ़नी है वो कल पढ़ेंगे, यानी सलात ए टू जी है कल का टॉपिक। ठीक है, फिर इंशाल्लाह यहाँ रुक जाते हैं, कल हम डायरेक्ट शुरू करेंगे नमाज पूरी शुरू से एंड तक। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तुबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।